का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी तिनके का संकट। जमींदार के नायब गिरीश बसु के अंतःपुर में प्यारी नाम की एक दासी काम में लगी। उसकी उम्र भले ही कम थी पर स्वभाव बहुत अच्छा था। दूर दूसरे गांव से आकर कुछ दिन काम करने के बाद ही एक दिन वो वृद्ध नायब की प्रेम दृष्टि से बचाव के लिए मालकिन के पास रोती हुई हाजिर हुई। मालकिन बोली, बेटी तू दूसरी जगह चली जा, तू तो अच्छे घर की लड़की है, यहां रहने पर तुझे परेशानी होगी। फिर चुपचाप उसने कुछ पैसे देकर उसे विदा कर दिया। पर भागना इतना आसान नहीं था, हाथ में राह खर्च भी थोड़ा था, इसलिए प्यारी ने गांव में हरिहर भट्टाचार्य महाशय के घर पर शरण लिया। उनके समझदार बेटों ने कहा, बाबूजी क्यों नाहक विपत्ति मोल ले रहे हो। हरिहर ने उत्तर दिया, विपत्ति स्वयं आकर शरण मांगे तो उसे लौटाया नहीं जा सकता बेटे। गिरीश वसु ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय आपने मेरी नौकरानी क्यों फुसला ली, घर में काम की बड़ी असुविधा हो रही है। उत्तर में हरिहर ने दो चार खरी खरी बातें कड़े स्वर में कही। वह सम्मानित व्यक्ति थे, किसी की खातिर कोई बात घुमा फिरा कर कहना नहीं जानते थे। नायब मन ही मन पंख निकली चींटी के साथ उनकी तुलना करता चला गया। जाते वक्त बड़े आडंबर के साथ उनकी चरण धूली ली। दो चार दिन बाद ही भट्टाचार्य के घर पर पुलिस आधम की। गृह स्वामिनी के तकिए के नीचे से नायब की पत्नी के कानों पर एक जोड़ा झुमका मिला। दासी बेचारी चोर प्रमाणित होकर जेल चली गई। भट्टाचार्य महाशय को अपने देश प्रसिद्ध दबदबे के जोर पर ही चोरी के माल के रखने की अभियोग से मुक्ति मिली। नायब ने फिर ब्राह्मण की चरण धूली ली। उनके मन में कांटा चुभा रहा। उनके बेटों ने कहा, जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता चले, यहां बड़ी मुश्किल दिख रही है। हरिहर ने उत्तर दिया, पैतृक घर मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा, भाग्य में लिखा होने पर विपत्ति कहां नहीं आती। इसी बीच गांव में नायब द्वारा अत्यधिक कर वृद्धि की कोशिश में रायत विद्रोही हो उठी। हरिहर की सारी जमीन माफी की थी, जमींदार से उसका कोई सारोकार नहीं था। नायब ने अपने मालिक को बताया, हरिहर ने ही रैतों को आश्रय देकर विद्रोही बना दिया है। जमींदार ने कहा, जैसे भी हो भट्टाचार्य को ठीक करो। नायब भट्टाचार्य की चरण धूली लेकर बोला, सामने वाली जमीन परगना की सीमा में है, उसे तो छोड़ना होगा। हरिहर ने कहा, ये क्या कह रहे हो, वह तो मेरी बहुत दिनों की दान की जमीन है। हरिहर के आंगन से लगी पैतृक जमीन को जमींदार के परगने में बताकर नालिश दायर कर दी गई। हरिहर बोले, तब तो इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा, मैं तो बुढ़ापे में अदालत में गवाही देने नहीं जा सकूंगा। उनके बेटों ने कहा, घर से लगी पैतृक जमीन ही यदि छोड़नी पड़े तो फिर घर में कैसे रहा जाएगा। वृद्ध पैतृक घर से जाने से भी अधिक मोह में कांपते डग से अदालत में गवाह के कटघरे में जाकर खड़े हुए। मुंसिफ नवगोपाल बाबू ने उनकी गवाही सही मान मुकदमा खारिज कर दिया। गांव में भट्टाचार्य के पास रायतों ने इसे लेकर बड़े धूमधाम से उत्सव समारोह शुरू कर दिया। हरिहर ने जल्दी से उन्हें रोका। नायब ने आकर विशेष आडंबर के साथ भट्टाचार्य की चरण धूली ली और सारी देह और सिर माथे लगाई और फिर अपील दायर कर दी। वकील लोग हरिहर से पैसा नहीं लेते थे। वह ब्राह्मण को बार बार आश्वासन देते, इस मुकदमे में हारने की कोई संभावना नहीं है, दिन भी क्या कभी रात हो सकती है। ये सुनकर हरिहर निश्चिंत होकर बैठ रहे। एक दिन जमींदार की कचहरी में ढांक डोल बज उठे। बकरे की बलि के साथ नायब के मकान में काली मैया की पूजा होगी। भला बात क्या है? भट्टाचार्य को खबर मिली कि अपील में उनकी हार हुई है। दिन कैसे रात हुई? बसंत बाबू ने इसका गूढ़ किस्सा इस तरह बतलाया। हाल ही में जो नए एडिशनल जज होकर आए हैं, मुंसिफ नवगोपाल बाबू के साथ उनकी बड़ी खटपट थी। उस समय वे कुछ नहीं कर पाए। आज जजी की कुर्सी पर बैठकर नवगोपाल बाबू की दी हुई राय को देखते ही उसे उन्होंने पलट दिया, इसीलिए आप हार गए। परेशान हरिहर ने पूछा, हाई कोर्ट में क्या इसकी कोई अपील नहीं? बसंत बाबू ने उत्तर दिया, जज बाबू ने अपील से फल पाने की संभावना तक नहीं छोड़ी है। उन्होंने आपके गवाह पर संदेह प्रकट किया और विरोधी पक्ष के गवाह का विश्वास किया। हाई कोर्ट में तो गवाह पर विचार नहीं होगा। वृद्ध ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, फिर मेरे लिए कोई उपाय? वकील बोले, उपाय तो एक भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन गिरीश बसु ने लोगों के साथ आकर समारोह के साथ ब्राह्मण की चरण धूली ली और जाते हुए गहरी सांस के साथ कहा, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी तिनके का संकट। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।